नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, राजधानी में शराब की रिटेल बिक्री से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने ब्लू लाइन ट्रेनों के लिए एक व्यापक मिड लाइफ रिफर्बिशमेंट पहल शुरू की। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पार्सल बुकिंग से 460 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया। दिल्ली पुलिस की पूर्वी शाखा ने आज अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ गिरोह के 6 तस्करों को गिरफ्तार किया और दिल्ली के उपराज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने महान गायिका आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि राजधानी में शराब की रिटेल बिक्री से जुड़े सरकारी उपक्रमों के वित्तीय मामले में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में यह तथ्य सामने आया है कि शराब बिक्री से जुड़े कुछ सरकारी उपक्रमों में लंबे समय तक खातों का समुचित मिलान नहीं किया गया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसके चलते वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी खजाने को संभावित नुकसान की स्थिति बनी है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित संस्थाएं अपने पिछले 5 वर्षों के वित्तीय एवं संचालन से जुड़े रिकॉर्ड का व्यापक मिलान करें। इसमें बिक्री, खरीद, स्टॉक और नकद खातों से संबंधित सभी प्रविष्टियों की गहन जांच शामिल होगी। साथ ही इन संस्थाओं को दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के साथ करीबी समन्वय स्थापित करते हुए सभी रिकॉर्ड का सत्यापन और वैधीकरण सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा इन संस्थाओं के बिक्री, स्टॉक और राजस्व संबंधी आंकड़ों का स्वतंत्र रूप से क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की वित्तीय कुप्रबंधन या गड़बड़ी की पूरी तरह पहचान की जा सके। श्रीमती गुप्ता ने यह भी निर्देश दिया कि सभी संबंधित संस्थाएं और आबकारी विभाग इस पूरी प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आदेश जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान।
दिल्ली मेट्रो ने अपनी ब्लू लाइन ट्रेनों के लिए एक व्यापक मिड लाइफ रिफर्बिशमेंट पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा, आराम और यात्रा के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना है। इस पहल के तहत सभी पुरानी रोलिंग स्टॉक ट्रेनों को आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे विश्वसनीय बनी रहें और मौजूदा मानकों को पूरा कर सकें। एक रिपोर्ट।
दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने तीसरे चरण की पहली रिफर्बिश्ड ट्रेन का निरीक्षण किया। रिफर्बिशमेंट के काम में ट्रेन के अंदरूनी हिस्सों और सिस्टम दोनों में बड़े सुधार शामिल हैं। साथ ही अत्याधुनिक आईपी आधारित पैसेंजर अनाउंसमेंट और पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम और एलसीडी आधारित सक्रिय योजना के साथ साथ डिस्प्ले स्क्रीन भी लगाई गई है। ये सिस्टम रूट, मौजूदा समय और स्टेशनों पर ट्रेन के के अनुमानित समय के बारे में रियल टाइम जानकारी देते हैं। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि सभी कोच में एक नया फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है, जो धुएं और गर्मी का पता लगाने वाले डिटेक्टरों से सुसज्जित है। यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग प्वाइंट लगाए गए हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली मेट्रो और उससे जुड़े सड़क तथा फ्लाईओवर परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में आधुनिक और सशक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे यातायात अवरोध कम हो, यात्रा सुगम बने और प्रदूषण में कमी आए। एक रिपोर्ट।
दिल्ली के परिवहन प्रणाली सुधारने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बैठक के दौरान बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। संबंधित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि दिल्ली मेट्रो का वर्तमान नेटवर्क 416 किलोमीटर में फैला है, जिसमें 303 स्टेशन, 12 लाइनें और 32 इंटरचेंज स्टेशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 104 किलोमीटर लंबा नेटवर्क और 81 स्टेशन निर्माणाधीन है। चौथे चरण के प्राथमिक कॉरिडोर में तेज प्रगति हुई है और कुल भौतिक प्रगति 79% तक पहुंच चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि मंजलिस पार्क से मौजपुर, दीपाली चौक से मंजलिस पार्क और जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन जैसे महत्वपूर्ण सेक्शन चालू हो चुके हैं। साथ ही कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक, मंजलिस पार्क से आरके आश्रम और तुगलकाबाद से एरो सिटी जैसे प्रमुख कॉरिडोर दिसंबर 2026 तक पूरे किए जाने का लक्ष्य है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि चौथे चरण के शेष 3 कॉरिडोर कॉरिडोर पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा पांचवें चरण परियोजनाओं पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो और इससे जुड़े सड़क नेटवर्क का विस्तार राजधानी की जीवन रेखा को मजबूत करेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पार्सल बुकिंग से 460 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है, जो भारतीय रेलवे में सबसे अधिक है। उत्तर रेलवे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दिल्ली मंडल का यह अर्जित राजस्व भारतीय रेलवे का लगभग 21% और उत्तर रेलवे का लगभग 78% है। इसके अलावा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिल्ली मंडल 100% डिजिटल भुगतान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और मार्च 2026 तक इसे हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। वहीं वर्तमान में 96% पार्सल भुगतान ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की पूर्वी शाखा ने आज अंतरराज्यीय मादक पदार्थ गिरोह के 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनके कब्जे से 58 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ बरामद किया गया और लगभग 5 लाख से अधिक की नकदी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में पहले 2 आरोपियों को पकड़ा गया था, जबकि आगे की जांच के दौरान बाद में 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और थोक पैकेजिंग सामग्री जब्त की गई है। मामले की जांच जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि इसमें 3 आरोपी शामिल थे, जो नकली ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए धोखाधड़ी करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एक पीड़ित से लगभग 47 लाख से अधिक की ठगी भी की थी। दिल्ली सरकार मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिसर में लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से छात्र और छात्राओं के लिए 2 नए हॉस्टल भवनों का निर्माण करेगी। इसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा एक आयोजित व्यय वित्तीय समिति की बैठक में की गई। मुख्यमंत्री ने इसे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम निर्णय बताया। उन्होंने बताया कि दोनों हॉस्टलों का निर्माण कार्य करीब 36 माह में पूरा किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए पर्याप्त और बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस निर्णय से आने वाले वर्षों में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में और अधिक मजबूती के साथ उभरेगा। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने रोहिणी सेक्टर 20 और खेड़ा खुर्द में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह पहल सामाजिक समरसता, सशक्तिकरण और जन कल्याण को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से बाबा साहेब के विचारों जैसे कि समता, न्याय और अधिकार को आगे बढ़ाने का दिल्ली सरकार का संकल्प और भी दृढ़ हुआ है। दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि राजधानी में राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन इस महीने की 17 और 18 तारीख को किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
श्री खंडेलवाल ने कहा कि इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से 300 से अधिक महिला उद्यमी, नवाचार उद्यमी और व्यवसायी महिलाएं भाग लेंगी। साथ ही देश भर में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही अनेक प्रख्यात महिला हस्तियां विभिन्न सत्रों में अपने विचार रखेंगी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में आगामी संसद सत्र में चर्चा होने वाले महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता, उसके दूरगामी प्रभाव और महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के नए आयाम पर चर्चाएं होंगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक विकसित भारत केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं बल्कि उसकी संस्थाओं की मजबूती और युवाओं की सार्थक भागीदारी से परिभाषित होता है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह बात आज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आयोजित माय भारत बजट फेस्ट 2026 के दौरान कही। श्री गुप्ता ने यह भी कहा कि केंद्रीय बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय संकल्प की अभिव्यक्ति और देश के भविष्य का मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि आज यहां तथा 325 युवा महिलाओं की उपस्थिति सार्वजनिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है। साथ ही यह संस्थाओं के प्रति बढ़ती सहभागिता और राष्ट्र की दिशा तय करने वाली चर्चाओं में भाग लेने की तत्परता का संकेत है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को समाप्त होगी, जो 57 दिनों तक चलेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रथम पूजा 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर की जाएगी। एक रिपोर्ट।
जम्मू के लोक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराज्यपाल ने घोषणा की कि यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शुरू होगा। पंजीकरण की सुविधा देश भर में जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक सहित प्रमुख बैंकों की 554 शाखाओं में उपलब्ध होगी। तीर्थ यात्रियों को प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए तक का सामूहिक दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। उपराज्यपाल ने कहा कि बालताल मार्ग से पवित्र गुफा तक और आगे पंजतरणी तक के यात्रा मार्गों पर ग्रिड बिजली आपूर्ति और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने महान गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आशा भोसले की असाधारण आवाज और कालजयी कला ने संगीत प्रेमियों की कई पीढ़ियों को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि उनकी धुनें जो भावनाओं और विविधता से परिपूर्ण हैं, हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेंगी और अनगिनत आत्माओं को प्रेरित करती रहेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संगीत की आशा भोसले एक सच्ची महारथी थी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि संगीत का वह स्वर्णिम स्वर आज मौन हो गया है, जिसने पीढ़ियों को जोड़ा और हर भावना को सुरों में ढाल दिया। पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले का करियर 8 दशक से अधिक लंबा रहा। एक रिपोर्ट।
आशा भोसले ने अपने 8 दशकों से भी अधिक लंबे कार्यकाल में विभिन्न भाषाओं में 12,500 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए। उन्होंने मराठी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और 1948 में चुनरिया फिल्म के साथ हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश किया। लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और गीता दत्त जैसे दिग्गजों के बीच उन्होंने अपनी कला के दम पर एक अलग पहचान बनाई और अपने लंबे करियर के दौरान कई प्रमुख अभिनेत्रियों के लिए अपनी आवाज दी। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 18 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, 9 फिल्म फेयर पुरस्कार, जिनमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है, तथा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए रिकॉर्ड 7 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 2000 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाड़के पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, राजधानी में शराब की रिटेल बिक्री से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने ब्लू लाइन ट्रेनों के लिए एक व्यापक मिड लाइफ रिफर्बिशमेंट पहल शुरू की। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पार्सल बुकिंग से 460 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया। दिल्ली पुलिस की पूर्वी शाखा ने आज अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ गिरोह के 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। और दिल्ली के उपराज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने महान गायिका आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।